घर में अल्लाह की फरमा बरदारी करनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन नेचर है कि मुसीबत आती है तो इम्तिहान के जमाने में भी अल्लाह की फरमा बरदारी ना हो, इम्तिहान के जमाने में भी दुआ में दिल न लगे। दुआ में भी दिल लगना चाहिए, तकवा भी लगना चाहिए, तो मेहनत भी बढ़ जानी चाहिए, और कमजोर से कमजोर तालिबे इल्म को भी मेहनत करनी चाहिए। और मैंने कहा कि इम्तिहान के दो फायदे हैं, एक फायदा है आला नंबर से पास होना, वो भी मतलूब और मकसद, आला नंबर से पास होना ये भी मकसूद है। इसीलिए आला नंबर से पास होंगे इसका मतलब है कि आपका इल्म बढ़ा है, और माँ बाप खुश होंगे, उनकी दुआएं मिलेगी, ऐसा भी उनकी दुआएं मिलेगी, एक फायदा ये है, ये भी मकसूद है। और दूसरा फायदा वो तो मकसद जिंदगी है, वो ये है कि इम्तिहान की मेहनत के जरिए अल्लाह राजी होता है। आप रोजाना सबक सुनाने के लिए मेहनत करो या इम्तिहान के लिए मेहनत करो, अमल तो एक ही है, हुसूल इल्म। भाई सबक सुनाने के लिए याद करते हैं वो भी इल्म हासिल हो रहा है, और इम्तिहान के लिए मेहनत करते हैं वो भी इल्म हासिल हो रहा है। तो नीयत ये कर लो कि इम्तिहान के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि इल्म ज्यादा हासिल हो इम्तिहान के बहाने से, और अल्लाह राजी हो जाए। तो भाई तो समझ में आया
जी।
अब मौलाना अयाज साहिब जो हैं, मौलाना अयाज साहिब वो सुबह को निकलते हैं और ये नियत करते हैं कि आज की मेरी जितनी कमाई है वो सारी की सारी अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। मुफ्ती अय्यूब साहिब भी निकलते हैं इसी नीयत से कि आज की सारी कमाई में अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। अय्यूब साहिब 2 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे की ब्रेक लेते हैं, फिर 1 घंटा काम करते हैं, फिर 1.5 घंटे की ब्रेक लेते हैं लंच की, यानी रिलैक्स होने की हालत में काम करते हैं। कुछ बेच रहे हैं सड़क के ऊपर, लॉरी पर बेच रहे हैं फल फ्रूट वाले गरीब, और दिन के अखीर में ये 300 पाउंड कमा कर लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और काम कितना किया? 5 घंटे करते हैं। मुफ्ती अय्यूब साहिब वही काम करते हैं, उसी तरह की लारी है, उसी तरह की का फ्रूट है और बेच रहे हैं, और ये सुबह 8 बजे शुरू करते हैं और राउंड द क्लॉक शाम को 12 घंटे काम करते हैं। लेकिन किस्मत किस्मत की बात होती है, इनको 100 पाउंड मिले, ये अल्लाह के रास्ते में 100 पाउंड खर्च करते हैं, लेकिन अजर सवाब किसको ज्यादा मिला? अय्यूब साहब को। इसलिए मेहनत किसने ज्यादा की? तो यही बात है, किसी की किस्मत है कि उसका हाफिजा कवि है तो 2 घंटे मेहनत करता है और फर्स्ट नंबर से पास हो जाता है, और किसी की किस्मत है कि हाफिजा कभी नहीं है, 10 घंटे काम करता है फिर भी सेकंड लास्ट आता है। जी तो एक मकसद तो है इम्तिहान में आला नंबर से पास होना, उसमें तो वो 2 घंटे वाला कामयाब हो गया। दूसरा मकसद है अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना, उसमें ये 10 घंटे वाला कामयाब हुआ, तो बड़ी कामयाबी कौन सी है? इससे पता ही चला कमजोर से कमजोर तालिबे इल्म को भी इम्तिहान के जमाने में मायूस होकर बैठे नहीं रहना चाहिए। अरे भाई आई कि नहीं बात? और ये जो 2 घंटे पढ़ने वाला है वो अगर उसका मुकाबला करना चाहे आखिरत के लिए तो 2 घंटे पढ़े और बाकी 8 घंटे दूसरों को पढ़ाए, तब भाई कुछ समझ में आया? इसलिए मायूसी बिल्कुल नहीं। और पीछे मत देखो, आगे मत देखो, आप पीछे देखेंगे तो मंडे का पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया था, ट्यूसडे का भी बहुत अच्छा गया, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि मेरा अच्छा जा रहा है। इसको देखो कि इसमें आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। मंडे ट्यूसडे आपने गफलत की थी, लेकिन यू आर लकी, यू माइट नॉट बी लकी द थर्ड टाइम। ये मत देखो कि मंडे बहुत मेहनत की फिर भी मार्क नहीं मिले, ट्यूसडे बहुत मेहनत की फिर भी अच्छे जवाब नहीं लिखे। हो सकता है कि आज अच्छा हो जाए, भाई नहीं समझ, आगे पीछे नहीं देखने, जिस दिन जो इम्तिहान है उस पर फोकस करना। आपने आज से ये सोचना शुरू कर दिया कि संडे का इम्तिहान तो बहुत मुश्किल है, संडे का तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इल्म सिगा है संडे को कैसे ले? आज इल्म सिगा थोड़ा है, यही बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचने का कि हो सकता है कि संडे से पहले मैं दुनिया से चला ही जाऊं और इल्म सिगा का इम्तिहान देना ही ना पड़े, तो ऐसी चीज की फिक्र क्यों करूं जो शायद मेरे जिम्मे न आए। अरे भाई समझो, इसलिए मैं अल्लाह से भी खूब मांगा। मैं हज के लिए गया था 1983 में। हमारे यहाँ दारुल उलूम बरी में हिदाया का साल सबसे ज्यादा मुश्किल था, हिदाया का साल सबसे ज्यादा मुश्किल। उस वक्त 12 किताबें होती थी, आपने भी 12 पढ़ी, 12 किताबें आधे आधे घंटे का हर पीरियड, और सब मुश्किल किताबें, मुख्तसरुल मानी थी, मकामात थी, सब मुअल्लकात थी, मुतनबी थी, फिर वो मिस्र के शेख साहब थे तो अरबी में पर्चा लिखने का, जो भी वो सवाल पूछे अरबी में, तो सब मुश्किल मुश्किल किताबें। मिरकात भी मंतिक की मिरकात भी अरबी चहाब में थी हमारे, मुख्तारात थी, मुख्तारात तर्जुमे कुरान हिदाया दोनों। और 6 हफ्ते के लिए हज के लिए गया था, 6 हफ्ते, और सहमा ही इम्तिहान, तो वापस आने के बाद फौरन ही इम्तिहान, आने के 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद इम्तिहान। तो मैं वहां बहुत दुआ करता रहा कि अल्लाह ऐसी कोई शक्ल पैदा कर दीजिए कि इम्तिहान से बच जाओ। जो फर्स्ट आता है ना हमेशा, उसको इम्तिहान से बहुत डर लगता है, इसे कि नाक कट जाती है, सेकंड आए तो, थर्ड फोर्थ के बाद तो ऊपर आओ या नीचे जाओ कोई नहीं पूछता, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बहुत, इसीलिए तो वो मेहनत ज्यादा करते। तो हमारे भी यही हाल है, ये रिकॉर्ड खराब हो जाएगा हमारा। तो हज के दौरान भी यही कि तो ऐसी शक्ल पे जाए, हज के बाद भी अच्छा खासा रहे मक्का मुकर्रमा में। तो हज के बाद वालिदा को लेकर रोजाना 11:30 बजे हरम शरीफ में जाता था, उनको तवाफ कराता था, साइड पर बिठा कर कहता था कि अब आप बैतुल्ला को देखती रहो, मैं एक और तवाफ कर लेता हूँ। तो कभी उनके साथ थोड़ी देर बैठता तो बैतुल्ला को ऐसे देखते देखते मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जो अल्लाह तुम्हें इम्तिहान से बचा सकता है वो इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास भी तो कर सकता है। ये अजीब बात हुई कि इम्तिहान से बचा ले, इम्तिहान से बचा ले। तो वहां से मुझे अज्म मिला और मैंने ये दुआ शुरू कर दी कि अल्लाह मैं जाऊं और जाकर के इम्तिहान दूं और इम्तिहान देकर के पहले नंबर से पास हो जाऊं, वहां पर ऐसा फैसला किया। वो अरफात वगैरह में हर जगह पर वो पहली वाली दुआ थी, इस मतलब इस दुआ पर अब चूंकि यकीन था ना कि अल्लाह ये भी कर सकता है तो बहुत जमकर दुआ दी, और ऐसा ही हुआ, वापस आई अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल नंबर से पास हुई। तो पूरा दौर करने का टाइम भी नहीं था हमारे, तो दौर का टाइम भी क्या मिलता था, पर सब अपने फिक्र में होते हैं कि इम्तिहान में तकरार कौन कराएगा पूरा 6 वीक का। तो मुझे याद है कि मैंने मकामात वगैरह सभी मुअल्लकात वगैरह पर्चों को वहां इम्तिहान में बाज जगहों को हल किया, वो मैं पढ़ नहीं सका था पूरा। तो हल करने का तरीका ये था कि बहुत गौर व फिक्र करके कुरान में उस लफ्ज को ढूंढता था और कुरान का तर्जुमा मुस्तहज़ल था, और फिर जो है इंतबाह करके किसी तरह मैंने, लेकिन गिवअप नहीं किया, गिवअप नहीं। तो अल्लाह में भरोसा करो और मैं तो साढ़े सात तक इम्तिहान के जमाने में मेहनत बिल्कुल नहीं करता था। मेहनत मैंने आकर के राबिया में की जब ये इम्तिहान आया मेरा, तो रात को दो ढाई घंटे सोता था और पूरी रात फिर जागता था और इम्तिहान की तैयारी करता था। और उस वक्त मैंने जो मेहनत की और मेहनत करके फायदा मुझे महसूस हुआ इस तादाद में, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पहले तीन साल हमने मेहनत नहीं की। इसलिए वो पहले तीन साल वो किताब याद हो जाती थी, तो और भाई और पढ़ते, पूरी दुनिया पढ़ रही थी तो तू क्यों बैठा रहता था, तू तू क्यों सो जाता था, हाशिए देखता, शुरुआत देखता। इसलिए किताब याद हो जाए फिर भी पढ़ा जाए तो मायूसी बिल्कुल नहीं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप सोए और गफलत हो गई, तो गफलत हो गई तो बहुत डाउन फील, ये सब शैतान की बात है, वो डाउन फील कराता है ताकि आप इल्मी मेहनत न करें। तो ऐसा सोचने का कि चलो अब तो जाग गया हूं तो मेरे पास एक घंटा है, तो एक घंटा है तो जो कुछ भी है चलो कर लेते हैं और कल फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाऊंगा, उसमें मायूस होने की क्या जरूरत। तो एक किताब में गड़बड़ हो गई, नफ्स को सब अंदर से काउंसिल करने का, मेहनत करो, ये कॉन्सेप्ट बदल दो और फिर कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। देखो एक आदमी लास्ट आएगा 20% से, अब दूसरा आदमी लास्ट आएगा 25% से, तो 25% तो बेहतर है और पोजीशन से ज्यादा परसेंटेज किसी का। और पढ़ते पढ़ते जहां कहीं कोई चीज समझ में ना आए तो घबराओ मत, तुम दुरूद पाक पढ़ लो और या आलिम, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और या आलिम हो या आलिम हो या आलिम हो, समझ में आ गए। या बासित हो या बासित हो या बासित से भी फायदा होता है। रब्बी शराह ली सब्री व यस्सिर ली अमरी, इतना पढ़ लेने से भी फायदा होता है। पर्चा लिखते लिखते भी अगर अटक जाए और अगर किसी चीज पर अटक जाए तो फिर उसे छोड़ दो, कोशिश करो उसे छोड़ दो और आगे चले जाओ। तो बात समझे, जैसे ही पर्चा हाथ में आए तो पर्चे को देखो और पर्चे को देखकर जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो नोट कर लो। मारिफा की कितनी किस्में हैं, अभी आपको याद है तो लिख लो कि दो किस्में हैं, तीन किस्में हैं, दस किस्में हैं, जो भी है। इसलिए फिर क्या होगा, हो सकता है कि लिखते लिखते भूल जाएगा आप, तो हम पूरा पर्चा पहले देख लेगा और हम चीजें लिख लेंगे, घबराने का बिल्कुल नहीं। और अल्लाह से रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। इस्तिग़फ़ार करो, घबराने से चीजें उड़ जाती है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में घबरा नहीं जाने, जो घबरा जाता है उसकी चीजें उड़ जाती है। और अल्लाह से तो इम्तिहान गाह में आ जाने के बाद तो अल्लाह ही बचा सकता है, अल्लाह ही मदद कर सकता है, किताब नहीं कुछ नहीं, तो बैठे बैठे भी अल्लाह से दुआ जाओ। क्यों ऐसा समझते हैं कि अल्लाह नहीं मदद कर सकता, अल्लाह मदद कर सकता भाई कुछ नहीं। तो बात अब खत्म कर रहा हूँ, ये तो इम्तिहान के बारे में बात थी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखो आप हजरत की लाइफ में कितना फर्क आ जाता है। इसलिए आपको पता है कि ये लोग लाइव है, कल हमें जलालुद्दीन शरीफ का पर्चा लिखना है, बस अब कोई मोहलत नहीं है, डेड लाइन है। तो मौलाना आयत साहिब की तरफ से ऐलान हो जाता है कि फुना तारीख से इम्तिहान शुरू हो रहा है, तो आपकी लाइफ में कितना फर्क आ जाता है। और जैसे जैसे करीब पहुंचते हैं तो और कितना फर्क आ जाता है भाई, कुछ समझ नहीं। और अफसोस और नदामत भी बहुत होती है कि पहले जरा सबक में भी अच्छी मेहनत करती तो अच्छा होता, ये है वो है, कितने रिग्रेट्स होते हैं, कितने ऐसा होता है। तो देखो ये जो इम्तिहान है ये तो ऐसा है कि जिसमें बहुत पहले से नोटिस दी जाती है, सबको पता होता है कि अराउंड रबीउल अव्वल इम्तिहान होगा, आगे पीछे पहले से पता होता है। और फिर तारीख से पहले इत्तला भी दी जाती है, सब बताया भी जाता है, मौका भी दिया जाता है। लेकिन मौत जब आएगी वो भी इम्तिहान की तारीख है हमारी, तो वो पहले से नोटिस नहीं दी जाएगी, अचानक आ जाएगी, तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त तो लास्ट मिनट तैयारी भी नहीं हो सकेगी। तो इस इम्तिहान, ये बहुत छोटा इम्तिहान है, इस इम्तिहान को सामने रखकर उस बड़े इम्तिहान की फिक्र करें। तो हमारे यहाँ ये तालीम और तज़किया, ये जो दो शोबे हैं, तालीम और तज़किया, तो ये तालीम और तज़किया ये दोनों शोबे इसीलिए हैं कि तालीम के ज़रिए हमें मालूम होता है कि हमें करना क्या है, और तज़किया के ज़रिए हमें मालूम होता है कि कैसे करना है। तो इन दोनों शोबों से फ़ायदा उठाओ। अल्लाह ताला शानहू मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप दोस्तों को भी अमल की तौफीक दे। बस यही हमें करना है, हमें मिलजुल कर साथिया तलबा काम करने वाले हम सबको मिलजुल कर अपनी आखिरत बनानी है, और अपनी आखिरत बनाने के साथ साथ और मुसलमानों की और इंसानों की आखिरत कैसे बन जाए उसकी भी फिक्र, इसके लिए मेहनत करनी है। अल्लाह ताला शानहू अमल की तौफीक दे आप सब लोगों को, हमें भी इम्तिहान को अल्लाह आसान करना है। अल्लाह मेहनत की तौफीक दे, शैतान और नफ्स के मकाइद से बचाए, सुस्ती गफलत से बचाए, और अल्लाह ताला शानहू फहम को तेज कर दे, हाफिजी को कवी कर दे, और अल्लाह ताला शानहू सीने को मुनशर फरमा दे, और अल्लाह ताला उसे विआए इल्म बना दे, और अल्लाह ताला शानहू इम्तिहान के मौके पर भी पूरे शरह सदर के साथ सही सही जवाब लिखने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला आला नंबरात से सबको पास फरमाए, और माँ जो कि माँ बाप के लिए भी खुशी का बाइस हो, असातिज़ा के लिए खुशी का बाइस हो, और हर तालिबे इल्म के लिए भी आगे और मेहनत का वो सबब बन जाए।